आहान हक्का बक्का रह गया और हकलाते हुए बोला, तुम दादाजी को मत बुलाना, मैं बस जा रहा हूँ, लेकिन प्लीज तुम उल्टा मत लेटना। अब रौनक की इरिटेशन हद से ज्यादा बढ़ गई थी। थोड़ा आगे बढ़कर उसने आहान को धक्का देकर अपने कमरे से निकाल दिया और झट से कुंडी लगा ली। फिर झल्लाकर बोली, आखिरकार इस छछूंदर को हो क्या गया है? मेरे उल्टा सीधा लेटने से इसको क्या प्रॉब्लम है? ये बोलकर रौनक बेपरवाही से बिस्तर में घुस गई। वहीं दूसरी ओर करीब 10 मिनट की डीप किस के बाद ध्रुव ने वंशिका को छोड़ा। वंशिका पूरी तरह हाफ रही। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव इस तरह का कोई ड्रास्टिक स्टेप उठा लेगा और उसे इस तरह किस कर देगा। ध्रुव को जल्दी ही अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया। उसने अपना गुस्सा वंशिका के नाजुक होठों पर उतारा था। उसके होठ पूरी तरह सूज गए थे। इतना ही नहीं, उसके होठों के कोने से खून निकलना शुरू हो गया था। वंशिका को इस तरह देखकर ध्रुव को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। वो बिना कुछ कहे उस कमरे से बाहर निकल गया। ध्रुव के जाने के बाद वंशिका बिना वक्त गवाए तुरंत वहां से निकलकर अपने कमरे में दौड़ती हुई आ गई और बिस्तर पर उल्टे मुंह लेटकर बुरी तरह रोने लगी। ध्रुव ने एक मुक्का खींचकर दीवार पर मार दिया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इस तरह जोश में अपने होश खो बैठेगा और बिना किसी लड़की की मर्जी के उसे किस कर देगा। अगली सुबह, इन सब बातों के बीच अगली सुबह हो चुकी थी। अगली सुबह जैसे ही आस्था की आंख खुली, उसने अपने आप को पूरी तरह अरमान की बाहों में जकड़ा हुआ पाया। अरमान बच्चों की तरह आस्था से लिपटकर सो रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर आस्था उसे इतना सा भी छोड़े तो आस्था उसे छोड़कर चली जाएगी। अरमान के बाल बिखरे हुए थे, लेकिन वो बड़ा ही हैंडसम और मासूम सा लग रहा था। उसकी दाढ़ी थोड़ी बढ़ी हुई थी क्योंकि अरमान पर हमले के बाद उसने खुद पर कोई ध्यान नहीं दिया था। जब से आस्था की नफरत का उसे एहसास हुआ था, तब से उसकी हालत और ज्यादा खराब सी हो गई थी। हल्का सा पीलापन उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था, लेकिन अगले ही पल आस्था को अरमान का चेहरा खून से सना नजर आने लगा। आस्था थोड़ा सहमते हुए अपने आप को अरमान से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि अरमान के चेहरे को देखते देखते उसे अचानक अरमान के चेहरे पर ढेर सारा खून लगा हुआ नजर आने लगा। वो एकदम से अरमान से डरने लगी और जोरों से चिल्लाती हुई बोली, आह छोड़ो मुझे। उसने अरमान की नींद की भी परवाह नहीं की। अरमान, जो एक सुकून की नींद सोया हुआ था, आस्था की आवाज़ सुनकर उठ गया। हालांकि उसने अपनी पकड़ आस्था पर इतनी सी भी ढीली नहीं की थी। उसे पकड़े पकड़े ही वो बैठ गया। आस्था ने तुरंत अरमान के हाथों को अपनी कमर पर से हटाने की कोशिश की और अरमान की ओर देखकर लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, मुझे छोड़िए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, समझे आप। अरमान ने अपना चेहरा आस्था के कंधे पर रख दिया और बिना कुछ बोले थोड़ी देर तक उसे अपनी बाहों में भरकर महसूस करता रहा। आस्था उसकी इस हरकत पर और ज्यादा गुस्से से भर उठी और बोली, देखो मैंने आपसे कहा ना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, तो आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हैं? हाँ, और वैसे भी मैं किसी खूनी के साथ किसी भी कीमत पर नहीं रह सकती हूँ। अरमान उसके कानों के पास जाकर फुसफुसाते हुए कहता है, अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो मैं वादा करता हूँ मैं इस पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। हालांकि अरमान बड़े ही धीमे धीमे ये बात बोल रहा था, लेकिन आस्था को अचानक उसकी आवाज़ सुनकर ऐसा लगा जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी में भी सनसनी दौड़ गई हो। आस्था को आज अरमान से वही डर लग रहा था जो उससे पहली मुलाकात यानी शादी की रात में लगा था, जब अरमान ने बेपरवाही से उस पर गोली चलाई थी। आस्था ने थोड़ा सा खुद के जज्बातों पर कंट्रोल किया और अरमान को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, देखिए आप पूरी दुनिया को आग लगाओ या सबको आग लगाओ, मैंने कहा ना मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है और मैं अब आपके करीब नहीं रहना चाहती हूँ, समझे आप। हूँ। अरमान आस्था को कुछ बोलना चाहता था, लेकिन तुरंत उसका फोन बजने लगा। अरमान का फोन वॉइस सिस्टम से ऑपरेट होता है, इसलिए अरमान ने बिना फोन देखे ही उसे उठाने के लिए बोल दिया। जैसे ही फोन स्पीकर पर खुद बखुद हुआ, तुरंत फोन की तरफ से एक आदमी की आवाज आई, किंग, उस लड़की की सांस काफी ज्यादा धीमी पड़ गई है, क्या उसे लड़की की जान लेनी है या फिर उसे बचाना है? ये बात सुनकर आस्था की आंखें फटने को तैयार थीं। इसका मतलब साफ था कि अरमान ने किसी लड़की को टॉर्चर करने के लिए रखा हुआ था और उसकी जान अरमान लेने वाला था। अरमान थोड़ा सा बेचैन हो गया। वो तो अपनी बीवी को मना रहा था, कहां दूसरी कॉल पर इस तरह की बातें आ गईं। अरमान ने आस्था के चेहरे की ओर देखते हुए नॉर्मल वॉइस में कहा, उस लड़की को अभी कुछ नहीं होना चाहिए, उसकी जान मैं अपने हाथों से लूंगा। ये बोलकर अरमान ने फोन कट करने के लिए बोल दिया। अब आस्था का गुस्सा बढ़ चुका था। वो नफरत से अरमान की ओर देखते हुए बोली, दूर हटिए मुझसे और मेरे करीब आने की कोशिश मत कीजिएगा, आप एक नंबर के खूनी हैं और आप कभी भी नहीं सुधर सकते हैं, कभी भी नहीं। हूँ, और मैं अब आपसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, छोड़िए मुझे। ये बोलकर आस्था जबरदस्ती अरमान से खुद को छुड़ाते हुए तुरंत वॉशरूम में घुस गई। अरमान उसे जाते हुए एक पल देखता रहा और अंदाज बदलते हुए बोला, जब तुम्हें ये पता चलेगा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है तो मुझे उम्मीद है तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी। ये बोलकर अरमान अब जल्दी ही अपने कमरे से बाहर जाने लगा। उसकी हालत पहले से काफी बेहतर थी क्योंकि आस्था का साथ मिलने पर वो सुकून से सो गया था। सोने के बाद उसके शरीर को काफी ज्यादा आराम मिला, जिसकी वजह से आज उसका शरीर 70% ठीक हो गया था। वहीं दूसरी ओर नानी माँ जल्दी ही उठकर हॉल में बैठ गईं और राजेश से बोली, राजेश बेटा जाओ मेरी आस्था को बुला कर लाना, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। नानी माँ फटाफट से अविनाश और एंजल की शादी की बात आस्था से करवाना चाहती थी ताकि आस्था अविनाश को शादी के लिए मना सके। हालांकि आस्था को दूर दूर तक इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अविनाश वो शादी बिल्कुल भी नहीं करेगा जब तक कि अविनाश का मकसद पूरा नहीं हो जाता। आस्था जो कि वॉशरूम में थी उसे एहसास हो गया कि कमरे में कोई नहीं है और अरमान कमरे से बाहर चला गया है, इसलिए आस्था फटाफट से चेंज करके बाहर निकली और सीधा हॉल में जाने लगी। उसने देखा कि अरमान सिंघानिया इस वक्त हॉल में भी मौजूद नहीं है। आस्था मन में बेचैनी से सोचने लगी कि जरूर अरमान उस लड़की को मारने के लिए जा रहा होगा जिसके लिए उनके आदमी का फोन आया था। आस्था ने सोच लिया था कि उस लड़की की जान तो वो किसी कीमत पर नहीं जाने देगी और वो उसे बचाकर ही रहेगी, चाहे उसे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन इसके लिए उसे अरमान पर नजर रखनी थी कि अरमान कब क्या करने वाला है। जैसे ही वो हॉल में गई उसने देखा नानीमा उसी का इंतजार कर रही थी। नानीमा को देखकर आस्था ने उन्हें गले से लगा लिया और बोली, नानीमा जब आप कोमा में गई थी आप नहीं सोच सकती कि उस वक्त मेरी क्या हालत हो गई थी। नानीमा आपके बिना मेरा कोई भी नहीं है। ये बोलते आस्था की आंखें भर आती हैं। नानीमा ने भी आस्था के सर पर हाथ फेरा। कुछ देर उसे शांत करने के बाद उसका दिल बहलाने के लिए इधर उधर की बातें की। फिर बातों ही बातों में अविनाश और एंजल की शादी की बात आस्था से कर दी। ये खबर सुनकर आस्था के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जब अगले ही पल वो उदास हो गई। आस्था हिचकिचाहट से बोली, लेकिन पता नहीं भाई शादी के लिए मानेंगे या नहीं, लेकिन मैं उनकी शादी एंजल से सचमुच करवाना चाहती हूँ। मेरी वजह से उनका प्यार उनसे दूर है।
क्योंकि उस दिन गांव में एंजल और अविनाश की बातें आस्था सुन चुकी थी और तब से उसे रिग्रेट हो रहा था कि उनके बीच उसकी वजह से दूरियां आ गई हैं। क्योंकि आस्था तो रौनक को ड्रग्स की घटना का जिम्मेदार एंजल को ही समझ रही थी, क्योंकि एंजल डिम्पल के साथ थी। आस्था ने इस बात को जाने दिया और नानी माँ को आश्वासन दिया कि वो जल्द ही अविनाश भैया से शादी की बात करेंगी और उन लोगों की शादी करवाएंगी। वहीं दूसरी ओर इस वक्त अरमान अपने स्टडी रूम में देव के सामने मौजूद था। देव के पास इन्फॉर्मेशन थी कि अरमान के पिता का इलाज जो कि विदेश में हो रहा था वो अब काफ़ी हद तक सुधार हो चुका था और बहुत जल्द उन्हें इंडिया ले आने वाले थे। अरमान काफ़ी खुश था कि दादाजी को वो उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा देगा, लेकिन फ़िलहाल उसे सबसे पहले अपनी खूबसूरत बीवी आस्था को मनाना था, क्योंकि आस्था को मनाना उसकी सबसे पहले प्रायोरिटी थी। आताश और सुमित आगे आते हैं और अरमान की ओर देखकर बोलते हैं कि अभी तक वंशिका ने पूरा सच नहीं बताया है कि आखिरकार उसने ये सब कुछ क्यों किया था। अरमान ने आकाश को हुक्म दिया कि वो फटाफट से इस बात के बारे में पता लगाए कि राजवीर जिंदल से वंशिका का क्या लेना देना है और वो राजवीर जिंदल की जान क्यों लेना चाहती थी। हर हाल में वो उसके बारे में जानना चाहता था। हालांकि इस वक्त वंशिका सिंघानिया मेंशन में ही थी, लेकिन आस्था की वजह से अरमान उससे कुछ भी नहीं पूछना चाहता था, वरना वंशिका एक मिनट में सारा सच अरमान को बता देती, क्योंकि अरमान का इतना पावरफुल ऑरा था कि उसको देखने के बाद कोई झूठ बोल ही नहीं सकता था। आकाश ने बोल दिया कि वो इस बारे में तो पता लगा कर रहेगा, लेकिन उससे पहले उसने अरमान से सुमित और राधिका की शादी की बात बताई। सुमित चौंक गया कि उसकी शादी की बातचीत चल रही है और उसे ही नहीं पता। तब सुमित ने ज़्यादा नानुकूर नहीं की, क्योंकि अब वो राधिका के साथ आगे बढ़ चुका था, तो उसने भी दिल से राधिका को अपना लिया था और वो थोड़ा सा ब्लश करता हुआ स्टडी रूम से बाहर निकल गया। अरमान को रियलाइज़ हो गया कि शायद इस बार सुमित ये शादी चाहता है। आकाश चुलबुली मुस्कान के साथ अरमान से बोला, इस शादी में तुम्हें आस्था को मनाने का मौका भी मिल जाएगा और साथ ही साथ हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि आस्था के मन से हम तुम्हारी बुरी छवि को मिटा दें जो भी उसने डेविल किंग को लेकर बना रखी है। अरमान को आकाश की बात सुनकर थोड़ा सा राहत मिलती है कि कम से कम ये लोग उसके और आस्था के बारे में इतना सोचते हैं। अरमान ने तुरंत आगे बढ़कर आकाश को गले से लगा लिया। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि जब इस तरह से अरमान ने आकाश को गले लगाया था। आकाश को काफ़ी ज़्यादा अपनेपन की फीलिंग आई। अरमान सिंघानिया ने आगे बढ़कर कभी भी अपने प्यार का इजहार अपने भाई और दोस्तों से नहीं किया करता था। ये बात अलग थी कि वो उन पर जान छिड़कता था। आकाश अरमान के इस तरह से गले लगाए जाने पर काफ़ी इमोशनल सा हो गया और फिर बिना रुके कमरे से बाहर निकल गया। फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट्स ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टेक केयर।